ओम शांति। हम योग भी करेंगे और थोड़ी थोड़ी चर्चा भी। संसार में डर का माहौल है और हम सभी बोलो हमें ऐसी स्थिति में रहना है कि संसार से भी भय समाप्त हो और हम भी भयभीत न रहें। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, भय आकर्षित करता है कीटाणुओं को, भयभीत नहीं। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है टीवी पर, आज भी बहुत सीरियसली कही जा रही थी पहले, मैं वो आपको बता दूं, डिस्टेंस 3 फुट का ये ध्यान रखना है घरों में भी। इससे कहा यही दवाई है, क्योंकि इसकी कोई दवाई निकली नहीं है संसार में। एक बहुत अच्छी चीज अभी मैं सुन के आ रहा, मैंने थोड़ी सी टीवी खोली, मैंने कहा कोई नई चीज आ रही हो, चेक करने का एक सुंदर तरीका। एक डॉक्टर सिखा रहा था, श्वास भरो धीरे से और कितनी देर रोक सकते हो देख लो। बस अगर आप 10, 12, 15 सेकंड रोक रहे हैं तो ठीक हैं आप। जिनको कोरोना होगा वो सांस भरेंगे और फट से निकाल देंगे, 2 सेकंड, क्योंकि ये फेफड़े उनके कमजोर हो जाते हैं, इसलिए डरेंगे नहीं। लेकिन सबको ये चीजें सिखाएंगे अवश्य। माताएं दूर दूर बैठेंगी, यहां भी आ सकते हैं जो नीचे बैठ सकते हैं। तो हम सभी, मैं सोच रहा था अभी तो शंकर जी ने एक ही दम किया है, दम रू भी पर नहीं पहुंचा है, दम रू। बाबा कहते रहे साकार मुरलियों में, विनाश को देखना क्या नहीं है, मासी का घर नहीं, सहज काम नहीं है। पहली घटना ने ही संसार को हिला दिया और ब्राह्मणों को जगा दिया। जगे या नहीं, जगना है। ब्राह्मण भी ठंडे हो गए थे बहुत, कई संशय बुद्धि हो गए, इधर उधर भटक गए, विनाश नहीं हो रहा है। पता नहीं था कि जब विनाश होगा तो क्या हाल होगा, सोचते थे विनाश बड़ी सस्ती सी चीज है, बाबा भी नहीं आ रहा है। कई लोग इधर उधर भटक रहे, कई भूत कह देते हैं मैं बाबा हूं, इधर बाबा आ गया चलो। ये सब भटकाने वाली चीजें ब्राह्मणों में बहुत आ गई थी। अब बाबा जगा रहा है, क्योंकि जिन्होंने स्वयं पुरुषार्थ नहीं किया है, भगवान की आज्ञाओं पर चलकर जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, आगे आओ मुझे कहना पड़ेगा, यहां आओ, वो अब समय उनका शिक्षक बनकर उनसे पुरुषार्थ कराएगा। लेकिन नंबर किसको मिलेंगे, समय को। बाबा बहुत बार कहते थे भगवान जब टीचर बनकर पुरुषार्थ करा रहा है तब श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लो। माताएं भाइयों की ओर बैठेंगी खुली खुली, माताएं सुन रही हैं, भाइयों की ओर खुले, तो भाई जल्दी आ जाओ फिर हमें योग कराना है, जरा माताएं आती रहेंगी तो मुश्किल होगा। अब हमें, मैं आप सभी को एक संकल्प दे रहा हूं, जो बाबा कह चुके हैं बहुतों को नहीं पता है, जो सीरियसली बाबा की बातों को ग्रहण करते हैं उन्हें पता है कि आने वाले समय में सेवाएं उनके द्वारा होंगी जिन्होंने बाबा से सर्व खजाने जमा किए हैं, बाकी से नहीं। ये प्रदर्शनी मेले आदि तो सब बंद हो जाएंगे, सबको पता ही है ये नहीं चलेंगे। अब सेवाओं का रूप भी दूसरा होगा, मेरा एक संकल्प है आज के सबसे महान तीर्थ कौन सा बनेगा भारत में, पांडव भवन। कौन बनाएंगे? आप ही थोड़ा ही बन जाएगा, भगवान तो आए यहाँ, महान तपस्वियों ने यहाँ तपस्या भी की, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है अच्छी तपस्या करके मधुबन को महान तीर्थ बनाए। और महान तीर्थ बनने के लिए पहली शर्त है ये महान भूमि व्यर्थ से मुक्त हो जाए। जैसे इस वायरस का इतना खौफ हो गया और सावधानी बरती जा रही है, हम व्यर्थ को भी ऐसा ही खतरनाक मान लें, उससे भी बचना है, बचाना है, बचना है और बचाना है। एक व्यर्थ चर्चा करेगा दूसरा सुने ही नहीं तो खत्म हो जाएगा। और मेरा ये संकल्प है कि मधुबन में भी एक सकास ग्रुप बन जाना चाहिए अब, क्योंकि यही संसार के लिए बहुत बड़ा सहारा होगा, इसी की जरूरत होगी। आप सभी ने सुना होगा, मैंने बाबा की ये बात कभी कभी सुनाई है, यहाँ तो सुनाई है। बाबा कहा करते थे, एक समय ऐसा आएगा बीमार लोगों की भीड़ तुम्हारे पास आएगी और तुम उन्हें दृष्टि देंगे और वे ठीक होंगे, लेकिन ये काम उनके द्वारा ही होगा जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे, औरों के द्वारा नहीं। संपूर्ण प्योरिटी में ही ये हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर माना रोगों को ठीक करने की शक्ति। जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है वो इस ओर बढ़ें, लेकिन प्योरिटी काम तब करती है जब उसमें व्यर्थ कुछ भी ना हो। कई पवित्र आत्माएं व्यर्थ में भी रह जाते हैं, तेरा मेरा पर चिंतन, तो प्योरिटी होते भी उनकी प्योरिटी एक शक्ति नहीं बनती। ईर्ष्या द्वेष से भी मुक्त, छोटी मोटी बातों से मुक्त, तो हमारी प्योरिटी संसार के लिए लाइट हाउस बन जाएगी। तो अब हम पहला अभ्यास करेंगे। अगर हमारी दृष्टि से रोग ठीक हो सकते हैं तो हम सबके वाइब्रेशन से संसार में बहुत लोग ठीक होंगे। तो पहली प्रैक्टिस करेंगे रेड लाइट, संसार को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। सभी बहनें संकल्प करें, मैं पवित्रता की देवी हूं। गुड फीलिंग में आ जाएं। भाई लोग संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे पास पवित्रता की शक्ति है, परमात्म शक्ति है। परमधाम में ले चले बुद्धि, महाज्योति को निहारें, जो सृष्टि के बीज हैं। पतित पावन पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं। अब मुझसे ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर ले, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ये पवित्र किरणें संसार में फैल कर सभी का कल्याण कर रही हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, हमारी भी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। जिनका योग बहुत अच्छा है वो अपने योग को दाता स्वरूप का योग बना दें, देने वाला। हमें बाबा से लेना है, संसार को देना है। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, हमें अपनी शक्तियों में विश्वास होना चाहिए। आप सबने सुन लिया होगा, या मुझे पता नहीं, वेदांती बहन नैरोबी, वो उन्होंने भी बाबा से एक संदेश लाया था जिसमें बाबा ने कहा था बहुत हिम्मत से रहना है। बाबा साथ है ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है, कंबाइंड होकर रहना है बाबा से। बाकी जो फिजिकल चीजें हैं वो तो करनी है, दूरी बना के रखना, हाथ धोना। मैं भी सभी भाई बहनों को कहूंगा सारे दिन में कम से कम 10 बार साबुन से हाथ धो लिया करें, क्योंकि भी हाथ टच होते हैं, हम कामकाज करते हैं, धो लेंगे तो वो खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी अगर हम थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं और हम जानते हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मैं तो इस क्लास में भी बहुत बार कहा, 2020 से 30 का पीरियड विश्व में परिवर्तन का समय है। भिन्न भिन्न घटनाएं होंगी, सृष्टि को भी झटके लगेंगे, ऐसे झटके लगेंगे जो हम सब ने सोचा भी नहीं, इसका भी तो नहीं सोचा था। संसार में किसी के अंदाज में जो नहीं है वो सब होने लगेगा। हमें तैयार भी रहना है। जब चेंज होती है तो चेंज के लिए स्वयं को तैयार भी रखना है। आज हम बहुत अच्छा भोजन खा रहे हैं, कल हमें दाल रोटी मिलने लगे, आनंद। दाल रोटी में और ज्यादा टेस्ट होता है। अचार रोटी मिलने लगे और आनंद, सूखी रोटी मिलने लगे उससे भी ज्यादा आनंद होगा या नहीं। लेकिन हम तो परेशान हो जाएं, बाबा ये क्या कर दिया तुमने, गाली बाबा को देने लगे। बाबा को ही गाली देते हैं, बाबा के बच्चे भी सुनता नहीं है हमारी। बाबा भी कहता है तुमने भी तो मेरी नहीं सुनी, जब मैं सुनाता था इतने साल तुम भी एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते थे। सुनवाई उसकी होगी जिन्होंने उसकी सुनी है। तो हम अपनी शक्तियों को भी पहचानेंगे और अब उन्हें कहीं भी वेस्ट न होने दें। शक्तियां आंखों से भी वेस्ट होती हैं, मुख से भी वेस्ट होती हैं, मन से भी वेस्ट होती हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा छोटा सा स्लोगन पहले से दे दिया था, हियर नो ई विल, सी नो ई विल, टॉक नो ई विल, ये कहा ना। आजकल सभी को, पर युवा पीढ़ी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नेट पे, इस इंटरनेट पे, इस मोबाइल में गंदी चीजें बहुत आती है, वो उसे देखते हैं, उन्हें थोड़ी सी संतुष्टि होती है, बहुत देर तक देखते हैं, इससे माइंड वीक होता है। और सबको अच्छी तरह पता हो ये सब घटनाएं, चाहे ये कोरोना वायरस की हो चाहे आगे आने वाली घटनाएं हो, उन पे ज्यादा प्रभाव डालेंगी जिनका माइंड बहुत वीक है। छोटी सी घटना सुनाओ, पिछले ग्रुप में एक युवक आया था, माँ बाप लाए युवक को, अच्छे परिवार पैसे वाले, कहा इसको डिप्रेशन हो रहा है। माँ ने कुछ विधि की जो मैंने भी बताई वो कर रही, फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया पढ़ते हो, कहा नहीं पढ़ाई छोड़ दी है, क्या करते हो, मैंने अचानक पूछ लिया कितने बजे सोते हो, तो वो तो इधर उधर देखने लगा। उसकी माँ ने कहा रात को 2 बजे उठना, दिन में 12 बजे। क्या करते हो 2 बजे तक, मोबाइल व्हाट्सएप। मैंने उसे खुले शब्दों में कहा अगर जिंदा रहना है तो इस मोबाइल को फेंक दो, नहीं तो डिप्रेशन के ऐसे शिकार हो जाएगी संसार की कोई शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। किसी को समझाया तो नहीं जा सकता, ये भी बहुत बड़ा व्यसन है, जैसे शराबी की शराब नहीं छोड़ाई जा सकती, मुश्किल होता है ना, बाबा के ज्ञान में आके लोग छोड़ते हैं। ये व्यसन, ये एडिक्शन जो मोबाइल का है, ये भी बहुत भारी है। बचेंगे इससे, कुछ भी गंदगी देखेंगे नहीं। ज्यादा बोलने वालों की शक्तियां विनष्ट होती है, दृष्टि देहों पर जा रही है उससे भी शक्तियां नष्ट होती हैं। मैं आज याद कर रहा था ब्रह्मा बाबा की एक कहानी की बात। बाबा बहुत अच्छा अभ्यास करते थे, ब्रह्मा ने बहुत बड़ी तपस्या की है ना, तब तो संपूर्ण बने, सबसे पहले भगवान के साथी बन गए, युग परिवर्तन में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। बाबा कहते थे मैं इस संसार को देखता हूँ, सामने वाली पहाड़ियों को देखता हूँ, सूरज चांद तारों को देखता हूँ, संकल्प उठता है जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। सूरज चांद तारे तो रहेंगे पर ये नहीं रहेंगे जो अब हैं, बदल जाएंगे। कैसे बाबा ने ट्रेंड किया अपने को, कितनी सुंदर प्रैक्टिस की। इसलिए मैं आज आप सभी को कहता हूं, चेंज के लिए स्वयं को तैयार रखें। कई लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, विनाश काल में पैसा काम आएगा, आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री ने भी कल कहा भागदौड़ न करो कि सब माल इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होगा, दुकान खुलेंगी, भारत के पास बहुत अन्न के भंडार हैं, 3 साल 5 साल खाया जा सकता है, पैदावार होगी, ऐसी घबराहट की जरूरत, ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। क्या काम आएगा, जो कुछ हमने श्रेष्ठ स्थिति बनाई है वो, जो पुण्य हमने जमा किए हैं वे, जो दुआएं हमने ली हैं वे। इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, लाभ नहीं, अब बिजनेस वाले बढ़ा देते हैं ना दाम फटाफट, कमा लो अभी कमाने का मौका है, ये कमाने का मौका नहीं, ये पुण्य कमाने का मौका है। मैं तो बिजनेस वालों को कहूंगा अगर आपके पास 10 रुपए की चीज आई है, 8 की आपने खरीदी थी, 10 की बेच रहे हो तो 8 की बेच दो, अपना प्रॉफिट भी छोड़ो, काम आएंगी केवल दुआएं और पुण्य, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। आप समझ लें जिस दिन अर्थक्वेक शुरू हो गई संसार में, सरकारों का क्या हाल होगा, बैंकों का क्या हाल होगा। इसलिए हमारे साथ वो है, कौन, जिसका साथ होने के बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। हम अगर मरेंगे तो कैसे, आनंद पूर्वक, क्योंकि जाएंगे वहां जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और जिंदा रहेंगे तो संसार की सेवा करेंगे, संसार को बहुत कुछ देंगे। अब बाबा तो, भगवान तो क्या बोल देता है वो तो केवल उसके बच्चे जाने, वो तो मुरली में आ जाता है, छुपी हुई बात तो नहीं है। दुनिया का विनाश होगा और तुम, मैं नहीं बोलूंगा अब, अभी तो आया 2-4 दिन पहले ही, भगवान है उसके लिए विनाश क्या चीज है। वो तो कहेगा मेरे बच्चे बहुत दुखी थे मेरे पास आ गए, चलो सुखधाम में भेजता हूँ तुम्हें। नीचे वाले रोते रहेंगे भगवान क्या कर दिया हमारे बच्चों को उठा लिया। माताएं भूल जाएंगी कि तुम्हें भी उठना है अब, केवल बच्चों को नहीं। तो हम सभी संसार को शक्तियों का दान देंगे। विधि चले अब फिर से रेड लाइट, जो बाबा ने विधि सिखाई है। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, सब ग्लोब के ऊपर आ जाएं। मैं शिव शक्ति पूर्वज मास्टर सर्व शक्तिवान, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। बहुत सुंदर बनाए विजन, उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर दे मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। ये शक्तियों की किरणें सभी के दुख हरें। सभी को वो कार्य कर लेना है, वो पुरुषार्थ कर लेना है जिसके लिए हमें ये सुंदर जीवन मिला है। और जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया है उन्हें बहुत अच्छी तरह चिंतन करना है। सब कुछ समर्पित कर दिया तो सब कुछ लेना है, सब कुछ देखकर सब कुछ न लिया तो जीवन की यात्रा के अंत में मजा नहीं आएगा। हम इस संसार से जाएं, भरपूर होकर जाएं, देते हुए जाएं, अपना भी सब कुछ दे दें। युधिष्ठिर की कहानी सुनी होगी, दिखाई बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए कहानियां बनी हैं। पहुंच गए स्वर्ग में, 5 मिनट का नरक मिला था झूठ बोलने के एवज में। 5 मिनट पूरे हो गए, जाने लगे तो नरक निवासियों ने आवाज लगाई, हमें छोड़कर न जाओ, आपके खड़े रहने से हमारे दुख समाप्त हो गए हैं। युधिष्ठिर ने देवदूतों को कहा कि भाई मैं तो सम्राट हूँ, मेरे यहाँ रहने से यदि नरकवासी सुखी हो गए तो मैं यहीं रहूंगा, इंद्र को कह दो मैं यहीं रहूंगा। कहा नहीं, पर ये विधान नहीं है, आपको चलना है। तो कहा मैं इनके लिए और क्या कर सकता हूँ। कहा अपने पुण्य दान कर दो इन्हें, तथास्तु, मेरे सारे पुण्य नरकवासियों को समर्पित, नरकवासी सुखी हो गए। देवदूतों ने कहा चलो महाराज, कहाँ चलूं, अब तो मेरे पास पुण्य भी नहीं रहे। कहा नहीं, आपके डबल हो गए, ये राज हैं। अपना समय दूसरों की सेवाओं में लगा देना, अपना धन जितना भी है भगवान के कार्यों में सफल कर लेना, अपने तन को भी यज्ञ सेवा में लगा देना, यही तो सफलता है। अपनों के काम आए जन्म जन्म, अपने लिए किया और अपने परिवार वालों के लिए किया। और जो राजा महाराजा सम्राट रहे हैं उन्होंने देश के लिए भी किया, लेकिन अब सुंदर समय है, हमें सारे संसार के लिए बहुत कुछ करना है आने वाले दिनों में भी। ये तो छोटी सी बात है ना, जिस दिन प्रकृति का खेल चालू हो जाएगा, बाबा के शब्दों में प्रकृति के 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे, उस दिन संसार में त्राही त्राही हो जाएगी। हमें पूर्वज बनकर सभी को वाइब्रेशंस देकर सभी को हिम्मत देनी होगी, उन्हें मदद करनी होगी, उन्हें राह दिखानी होगी, उनका बुद्धि योग ऊपर सर्वशक्तिवान से जुड़वाना होगा। इसलिए सभी अंतर्मुखी होकर बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, हम और अच्छे से अच्छा क्या करें, सब चिंतन करें। समय तो तेजी से आगे बढ़ेगा, समाप्ति अभी नहीं। बाबा ने उस दिन बोल दिया समय नाजुक आ रहा है। अब नाजुक का अर्थ कितना बड़ा हो सकता है ये तो सोच लें, सब कुछ छोटा भी अर्थ है उसका और बहुत विशाल अर्थ भी है। इसलिए हम समय के मालिक बन जाएं, सबसे गहरी बात है मुरली की, मेरी भी समझ में नहीं आती थी जब बाबा ये कहता था समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं सोचता था समय, सारे संसार ने कह दिया समय किसी का इंतजार नहीं करता। इंग्लिश में भी कहावत टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, तूफान और समय किसी की इंतजार नहीं करते, पर समय हमारा इंतजार कर रहा है। समय के मालिक हम हैं, हम परफेक्ट होंगे तो समय समाप्त होगा। हम समय को बदलने वाले बन जाएंगे, हम समय को नया रूप देने वाले, नई दिशा देने वाले बन जाएंगे। हमें चिंतन करना है और अच्छे से अच्छा क्या करें। अब दुनिया की ओर भागने का समय नहीं है, समझ रहे ना मेरी बात, कन्याओं को कह रहा हूं। दुनिया की ओर न देखो अब, क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं आजकल, मैं फ्री हूं तो खोल देता हूं थोड़ा ज्यादा। तो कन्याओं के मन में दुविधा, इधर जाएं या इधर, शादी करें अथा दुख, न करें तो अंदर का दुख। एक का फोन था आज, बच्चा 2 साल का, सारा दिन उसके पीछे दौड़ती रहती हूं, थक जाती हूं, योग करती हूं तो नींद आती है। कितनी बातें सुना दी उसने बच्चे की, ये बोलना नहीं सीख रहा है, इसका विकास नहीं हो रहा है। मैंने कहा देखो पहले मनुष्य बच्चों की कामना करता है, ठीक है बच्चे तो चाहिए, लेकिन फिर उसको कितना कष्ट होता है बेचारी को, ना खुशी थी ना चैन थी जीवन में। एक बच्चे को लेकर ही सारा दिन उसका संघर्ष में बीतता है। तो समय ऐसा आ गया है, ये काल चक्र अब सबको काल के मुंह में ले जाएगा, ये समय आ गया है। हम सभी क्या करेंगे, जैसे बाबा विश्व रक्षक है, हम मास्टर विश्व रक्षक। और ये काम वही कर सकेंगे जिसके पास एक तो प्योरिटी की पावर होगी, दूसरा शक्तियां बहुत होंगी, योग की शक्ति जिन्होंने जमा की है। तो हमारी प्योरिटी और योग की शक्ति के वाइब्रेशंस विश्व के रक्षक बन जाएंगे, मास्टर रक्षक। तो हम प्रकृति के मालिक बनकर प्रकृति को भी सकास दिया करें, मनोरंजक ढंग से दिया करें। आप घूम लें यहां बाहर, जगह है ओम शांति भवन के आगे से वहां तक तो आराम से जगह है, घूमें। एक बार हवा को सकास दे, संकल्प कर ले मैं पवित्रता की देवी, जो हवा मुझे टच करके जा रही हो पवित्र होकर संसार में फैलेगी। सूरज निकल रहा है, वाइब्रेशंस दे दे उसे, तुम्हें सारे संसार में घूमना है, ये पवित्र वाइब्रेशंस भी तुम्हारे साथ संसार में फैलते जाएंगे। जरूरी नहीं सवेरे ही दे दें, कभी भी उसको विजन में ला के दे दें, सागर को देखें यहीं से और जल को पवित्र वाइब्रेशंस दें। इस तरह हम धरती पर हम चलते हैं, अच्छे अभ्यास करके चलें तो हमारे पैरों से ही अच्छे वाइब्रेशंस धरती में समाते जाएंगे। हमें ये मनोरंजक तरीके भी योग के अपनाते रहना है ताकि योग में बोरियत ना हो। मैं आपको बता दूं एक चीज, क्योंकि ऐसे केस कईयों के आते रहते हैं, आप सबको बिल्कुल क्लियर हो, योग अभ्यास के लिए मनुष्य को मस्तिष्क की शक्ति की भी बहुत जरूरत होती है। मस्तिष्क शरीर का अंग, दिमाग, इसकी भी शक्ति, ये भी शक्तिशाली होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 2 घंटा योग किया फिर योग करने को मन नहीं लगता। एक का था योग से सिर भारी होता है ये वो, मैंने कहा कितना समय बैठती हो, 1.5 घंटा। मैंने कहा नहीं बैठो, 15-15 मिनट बैठो 4 बार। मैं समझ गया उसकी बातों से उसका ब्रेन वीक हो रहा है और वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तो क्या याद रखेंगे, वो मनुष्य जो ठीक से सोता है, 2 बातें होती हैं, जो बिल्कुल नहीं सोता या जो बहुत ज्यादा सोता है योगी नहीं बन सकता। अब इस कोरोना के लिए भी कहा जाता है नींद अच्छी हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि ये वायरस आकर्षित न हो हमारी तरफ, हम उन्हें आकर्षित न करें, अच्छी नींद। दूसरा वो योगी जो बिल्कुल नहीं खाता या बहुत खाता है योगी नहीं बन सकता। मनपसंद चीज बनी हो, रात को खा दी जी भर के पेट भर के, तो सवेरे उठा तो जाएगा ही नहीं। इसलिए एक बैलेंस डाइट और बैलेंस नींद, संतुलित नींद, संतुलित आहार, इससे हमारे ब्रेन को अच्छी एनर्जी मिलती है और हम अच्छा योग अभ्यास कर सकते हैं। ब्रेन पे दबाव नहीं डालेंगे। कई लोगों ने योग को समझा ही नहीं होता, समझाने वालों ने भी नहीं समझा होता। एक माता जी आई, मैं बाबा की लाइट को देखती रहती हूँ, सिर दर्द हो जाता है। मैंने कहा किसने बताया बाबा की लाइट को देखते रहो? तो हमारी दीदी ने बताया था। मैं कहना तो नहीं चाहता था पर मेरे मुख से निकल गया। अगर दीदी को बता देना लाइट नहीं होगी तो कैसे योग करोगे, बिजली चली जाए, शिव बाबा भी चमकना बंद हो जाए, फिर योग हो नहीं होगा। बाबा ने हजार बार कहा मुझे मेरे घर में याद करो। अनेक बातें योग के संबंध में बाबा सिखाते हैं, वो मैं सीखना है। साकार मूल्यों में बहुत कुछ आता रहता है रोज। इसलिए जिसका योग नहीं लगता वो पहले कुछ दिन आत्मविमानी होने की प्रैक्टिस कर ले, ताकि मन शांत हो जाए, बुद्धि स्थिर होने लगे। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। देखो सबसे सिंपल प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस में आत्मा परम धाम से स्तन में आके बैठ गई हूँ ब्रकुटी में। तीसरी प्रैक्टिस में आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। बाबा ने मनोरंजक तरीके सिखाए हैं, बहुत ज्यादा सिखाया है। कभी इस देह को छोड़ के परम धाम में जाओ मेरे साथ, फिर वहां से आओ पाठ बजाने। उस दिन मुरली में कहा काम पूरा हुआ, टॉप की स्थिति में पहुंच जाओ, परम धाम में बाबा के पास पहुंच जाओ। ये सहज योग। तो इस तरह का अभ्यास करेंगे। लाइट को देखना योग नहीं है, बाबा की कास्केट को देखते रहे वो योग नहीं होता। बाबा से हमारा नाता जुड़ गया है। बाबा की मुरलियों में कितनी बार आ गया होगा, हजारों बार, बाप टीचर सदगुरु के रूप से याद करो, आया या नहीं? कितनी बड़ी चीज है, जो भगवान था वो हमारा बाप हो गया। कभी सोचा नहीं था कि वो पढ़ाने भी आएगा क्या, और हम पढ़ने आएंगे उसके पास। दोनों बातें हो गई ना। भगवान ज्ञान का सागर, सृष्टि का बीज, हमें पढ़ाने आ गया और हम उसके पास पढ़ने आ गए। वो हमारा सदगुरु बनकर राह दिखाने आ गया, जीवन कैसे जियो सिखाने आ गया, क्या करो क्या न करो बताने आ गया। इन सब का चिंतन करना, इनके नशे में रहना, इनकी स्मृतियों में रहना, ये योग है। और बाबा ने क्या बताया जो बहुत लहर चलाई अभी, पांच स्वरूपों का अभ्यास, ये सुदर्शन चक्र है, ये भी योग का हिस्सा है। मैं थोड़े में सबको बता दूं, योग का लक्ष्य केवल विकर्म विनाश करना नहीं है, वो एक लक्ष्य है। योग से हमारे विकर्म विनाश होंगे। दूसरा लक्ष्य, योग से बैटरी चार्ज होगी। और क्या करना चाहिए हमें? हमें सर्वगुण संपन्न भी बनना है, हमें संपूर्ण पवित्र भी बनना है, तो पांच स्वरूपों का अभ्यास। हमें माया के युद्ध में विजयी भी होना है तो चाहिए क्या? ज्ञान की शक्ति। योग की शक्ति के साथ ज्ञान की शक्ति भी। अगर कोई बहुत योग करे लेकिन उसका मन स्वीट सॉफ्ट नम्र निरंकारी ईगोलेस न हुआ हो तो योग से ज्यादा फायदा नहीं होगा। विकर्म विनाश हो भी जाएं, लेकिन इस फील्ड में आकर फेल होंगे। इसलिए हमें सब कुछ प्राप्त करना है। हमारी फाइनल स्थिति है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निरहंकारी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कर दी है मुरलियों में रोज, जब तक तुम कर्मातीत न हुए, क्या नहीं होगा? महाभारत लड़ाई नहीं लगेगी, तब तक लगेगी बंद होगी, लगेगी बंद होगी। तो हमें कर्मातीत कराने के लिए प्रभु जी का प्लान है, थोड़ा झटके देना, तैयार हो जाओ, झटके देना, तब तो वैराग्य आएगा। नहीं तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी से वैराग्य ने विदाई ले ली है। जैसे सतयुग की डिक्शनरी में दुख नहीं होता, हिंसा शांति ये नहीं होते ना रोग आदि, तो यहाँ भी ब्राह्मणों की डिक्शनरी से वैराग लोप हो गया है। कहाँ चला गया पता नहीं, कोरोना लग गया उसको भी क्या हुआ। तो ये झटके जो हैं फिर से वैराग दिलाकर सबको कर्मातीत बनने की प्रेरणा देंगे, तब फाइनल युद्ध होगा। इसलिए हम सभी स्वतः ही बहुत अच्छा अभ्यास कर लें, हम समय की इंतजार न करें, समय हमारी इंतजार कर रहा है, बाबा हमारी इंतजार कर रहा है। अब तो सृष्टि पर दूसरे सुंदर खेल भी चलने वाले हैं ना, कोई ये ना सोच ले कोरोना आया तो बस सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। ये साक्षात्कार का खेल, जय जयकार का खेल, इष्ट देव देवियां प्रत्यक्ष होंगी संसार में, जैसे हम शिव बाबा से मिले तृप्त हुए ना हम, ऐसे ही हमारे भक्त हम सब से मिलकर तृप्त होंगे। करोड़ों लोग ब्रह्मा भोजन भी खाकर जाएंगे देवता सारे, या बिना ब्रह्मा भोजन खाए देवता बन जाएंगे। सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ और कम से कम त्रेता के आधे तक की आबादी 10 करोड़ तो ब्रह्मा भोजन खाएगी या नहीं, मधुबन में होकर जाएगी या नहीं, बताओ यहां उनके कदम पड़ेंगे या नहीं, अवश्य पड़ेंगे, यहीं से तो वरदान मिलेंगे उन्हें, ये भूमि उन्हें वरदान भी देगी, यहाँ का पानी भी उनके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा, यहाँ का एक बार का भोजन उनको तृप्त करने वाला हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े काम भी होने बाकी हैं। इसलिए कुछ आत्माओं ने बाबा की आज्ञाओं को अपना कर अपने को बहुत महान बना लिया है, और जिन्होंने नहीं बनाया उनको अब समय आगे बढ़ाएगा, लेकिन समय से भी जो समझ जाएंगे वो भी समझदार, लेकिन जो समय से भी न संभलें तो उनको तो उनकी गति वही जाने। इसलिए हम सभी सकासवस दिया करें, सबसे बड़ा पुण्य है 10-15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को, सभी योग में संसार के कल्याण के लिए सकास दिया करें। अब हम 5-7 मिनट पावरफुल योग करेंगे, फिर से रेड लाइट, बैठे अपने अपने सिंहासन पर राजा बनकर, मैं चमकते हुए मणि, बहुत शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं राजा हूं, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं, मैं परम पवित्र हूं, पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूं, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, अपने चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों की लाल किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। अभी शक्तिशाली आभा मंडल के अंदर बैठकर मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। आभा मंडल के साथ जा रही हूं परम धाम में। ऊपर हैं सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। यहां से मैं आत्मा अपने आभा मंडल के बीच में होकर नीचे उतरती हूं। आ गई इस देह में। ओम आभा मंडल रोज बनाएंगे सब तो सेफ रहेंगे।